अरुणिमा हैरानी से दरवाजे पर खड़ी थी और उन नौकरानियों की बात सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि ये लोग आस्तिक से कुछ मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आस्तिक ने अपनी प्रजा के लिए कभी कुछ नहीं किया है या उन्होंने कभी उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन इस तरीके से आस्तिक से कुछ मांगना उसे थोड़ा अजीब लगा। वो रसोई में दाखिल होती है तो नौकरानियां जैसे ही अरुणिमा को देखती हैं सीधी खड़ी हो जाती हैं और सर झुकाकर अरुणिमा को रानी साहिब कहकर बुलाती हैं। अरुणिमा उनके पास आती और कहती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं और आज घर में क्या है? ये बाहर इतना सारा सामान क्यों आया हुआ है? अभी आप लोग क्या कह रही थी कि राजा साहब से कुछ मांगेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है? नौकरानियां आपस में एक दूसरे को देखती हैं और फिर उनमें से एक कहती है, वो दरअसल रानी साहिबा, बात ऐसी है कि आज राजा साहब की माँ का जन्मदिन है और आज के दिन राजा साहब से कुछ भी मांगो तो वो ज़रूर देते हैं, इसीलिए हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं एक दूसरे को बता रहे थे जो पूजा के बाद हम राजा साहब से मांगने वाले हैं। नौकरानियों की बात सुनकर अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई। मतलब कि आज उसकी सास का जन्मदिन है। आस्तिक की माँ की तस्वीर अरुणिमा ने उस कमरे में देखी थी, लेकिन कभी आस्तिक से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अरुणिमा ने सोचा कि क्यों ना वो अमृता ताई से इस बारे में बात करे, वो उन्हें इस बारे में ज़रूर कुछ बता सकती है। अरुणिमा हैरानी से उन लोगों को देखकर कहती हैं, क्या आप लोग सच कह रहे हैं? आज के दिन राजा साहब से कुछ भी मांगो तो वो देते हैं, मना नहीं करते हैं? वो सारी नौकरानियाँ हाँ में सर हिलाती हैं। अरुणिमा कुछ सोचते हुए उनसे कहती है, ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए। अरुणिमा आस्तिक के लिए कॉफ़ी बनाते हुए यही सोच रही थी, अगर ये लोग सही कह रही हैं तो राजा साहब आज सबकी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि आज उनकी माँ का जन्मदिन है, इसीलिए वो किसी को मना नहीं करते हैं, तो वो मुझे भी मना नहीं करेंगे। अगर मैंने उनसे सवाल किया कि वो क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्यों मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हर रात वो मुझे क्यों जलील करते हैं और उन्हें कैसे सपने आते हैं जो वो इतनी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं, मैं राजा साहब से अपने सारे सवालों के जवाब मांगूंगी, और अगर ये लोग सही कह रही हैं तो राजा साहब को मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ये सबसे अच्छा मौका है इस बारे में जानने का। अरुणिमा ने अपना मन बना लिया था कि आज वो आस्तिक से इस बारे में पूछकर ही रहेगी। आस्तिक के लिए कॉफ़ी बनाती है और फिर उसके लिए नाश्ते की तैयारी करती है। महल के बाहर आकर एक कार खड़ी होती है और उसमें से पृथ्वी बाहर आता है। दरअसल दो दिन पहले ही उसे पता चल गया था कि माँ के जन्मदिन की पूजा इस बार सुबह ही रखी गई है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द वापस आना था। पृथ्वी को वापस आए देख सब बहुत खुश थे। प्रणाली और कीर्ति पृथ्वी से मिलकर बहुत खुश हुए। आस्तिक को भी पृथ्वी के आने की खबर मिल गई थी। वो नीचे आते हुए पृथ्वी से मिलता है और उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। पूजा की लगभग सारी तैयारियां हो गई थी। आस्तिक पूजा की तैयारी खुद अपने हाथों से चेक कर रहा था। सारे सेवक पूजा का सामान एक जगह इकट्ठा करते हुए रख रहे थे। पंडित जी रास्ते में थे, उन्हें किसी कारण से आने में देर हो रही थी, लेकिन वो जल्दी पहुंचने वाले थे। आस्तिक पूजा के सामान को देखते हुए अपने मन में कहता है, आज माँ का जन्मदिन है, आज का दिन मेरे लिए हर साल किसी त्यौहार की तरह होता है, हो भी क्यों नहीं, आज मेरी माँ इस दुनिया में आई थी, इसीलिए आज के दिन मैं हर किसी के मन की एक इच्छा पूरी करता हूँ, आज के दिन कोई भी मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे मना नहीं करता हूँ, मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं हर साल ये पूजा करता हूँ, और जब भी पूजा हो रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और उनका प्यार हमेशा मेरे साथ है। आस्तिक ने इस पूजा में प्रणाली के ससुराल वालों को भी बुलाया था। पूजा की लगभग सारी तैयारियां हो गई थीं, लेकिन आस्तिक बस इस समय घर के कपड़ों में खड़ा था। एक बार सारी व्यवस्था देखने के बाद आस्तिक अपने कमरे की तरफ जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो सके। आस्तिक अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि अरुणिमा सिर्फ ब्लाउज और सेपर में खड़ी थी। वो एक शिफॉन की साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। अरुणिमा ने अब तक जो भी साड़ी पहनी थी वो सब कॉटन की थी, लेकिन आज पहली बार शिफॉन की साड़ी पहनने में अरुणिमा को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरुणिमा जब दरवाजा खुलते हुए उस तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अपने सामने आस्तिक को देखकर अरुणिमा जल्दी से साड़ी को अपने सीने से लगाती है और आस्तिक की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। आस्तिक देख सकता था अरुणिमा के पेट में भी जख्मों के कुछ पुराने निशान हैं। उसके बाल जो उसने एक क्लिप के सहारे कवर किए हुए थे और उसमें से पानी की कुछ बंदे उसके शरीर पर गिर रही थी, ये दृश्य आस्तिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। आस्तिक के कदम अपने आप अरुणिमा की तरफ पड़ गए थे। उसके हाथ अरुणिमा की उस पतली कमर को छूने के लिए मचल रहे थे। जाहिर सी बात है, दो हफ्ते होने को आए थे, आस्तिक अरुणिमा के पास नहीं गया था। दरअसल जब अरुणिमा की माँ ने उसे अपनाने से मना कर दिया था तो आस्तिक अरुणिमा का हाल अच्छी तरह से समझ सकता था। जब दुनिया वालों के हाथों ठुकराए जाते हैं तो इंसान अंदर से कैसे टूट जाता है, आस्तिक ये अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। और अरुणिमा के लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही उसकी माँ थी, और अपनी माँ के हाथों ठुकराए जाने पर अरुणिमा संभल नहीं पाई थी, इसीलिए आस्तिक उसे थोड़ा समय देना चाहता था। लेकिन इस वक्त अरुणिमा का ये रूप देखकर आस्तिक खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो धीरे से अरुणिमा के पीछे जाता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है।
अरुणिमा एक पल के लिए कांप जाती है। उसे लगता है कि आस्तिक उसे फिर से मारने वाला है, लेकिन आस्तिक ने उसकी कमर पर अपने हाथों को लपेटते हुए धीरे से उसके कानों में कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ।